प्रिपेयर्डनेस नेटवर्क जो कि नेशनल लेवल पे 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ के इश्यूज को सूबाई महकमे से मिलकर देखता है, हमने उसको भी एक्टिवेट किया है। उसको न सिर्फ एक्टिवेट किया बल्कि उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनके जो हेड हैं, इस वक्त वो सिंध में कराची में हैं।
अच्छा।
और वहाँ पे वो तमाम इकदाम की निगरानी भी देखते
अच्छा।
कर रहे
जी 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 आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हमारे साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा शहाब उस्तो लाइन पर हैं। शहाब उस्तो, आपने भी सुना कि NDMA की तरफ से जो कुछ भी किया गया तो पेपर पे तो बहुत अच्छा दिखता है कि ये तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई, लेकिन इसके बावजूद आज की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जाता है कि कम से कम 830 लोग इस गर्मी की लहर में हलाक हो गए हैं। आप जानते हैं कि सियासतदान एक दूसरे पर जो हैं वो कीचड़ उछाल रहे हैं, वफाक सूबाई जो हैं अहदेदार उनको कह रहे हैं आपकी ज़िम्मेदारी थी, और सूबाई जो हैं अहदेदार वो वफाक को कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कोताही कहाँ कहाँ हुई?
थैंक यू। देखिए, मैंने जो अभी NDMA की तरफ से स्पोक्स पर्सन थे उनकी बातें सुनी है, और यकीन करें कि अगर आप इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के किसी स्पोक्स पर्सन को फ़ोन करेंगी तो वो इनसे भी बेहतर तरीके से और इनसे अच्छे ज़्यादा क्वालिटेटिव आर्गूमेंट देंगे और सब कुछ अच्छा है कि आपको खबर देंगे। लेकिन हकीकत यह है, जो आपने पहले अपने इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त प्रैक्टिकली लोग बेतहाशा उनकी हलाकतें हो रही हैं, तकरीबन 850 के करीब तो फिगर आ गई है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये वो लोग हैं जिनको अस्पतालों में लाया गया है, इनमें वो लोग शामिल नहीं है जो अस्पतालों में नहीं लाए गए या जो बेचारे इंटीरियर में कहीं गाँव में मुख्तलिफ रूरल एरियाज में जो बेचारे हीट स्ट्रोक की वजह से मारे गए हैं। इस वक्त सूरतहाल यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रही है, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन इन दोनों को पता है कि देर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो कि ये जिनके ये दोनों जिम्मेदार है। मसलन इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, आपने बताया कि कराची में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा एक बहरान चल रहा है, उसकी वजह बाकी तो बहुत सी हो सकती है, लेकिन एक जो बुनियादी वजह है कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी हमने वो पहले ही डिस्चार्ज करनी है, अब तो हम सिर्फ उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या एक्सपीडेंसी की बुनियाद पे या पॉलिसी की पब्लिक पॉलिसी की बुनियाद पे उनको के इलेक्ट्रिक को हम जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस तो दिन ब दिन पहले से बेहतर होती जा रही है, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेहतर हुई है, हमने लाइन जो थेफ्ट था उसको भी कम किया है, हमने ये कर दिया है वो कर दिया है। लेकिन जब इस तरह के टेस्टिंग टाइम्स आते हैं तो उनके सारे दावे जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं।
जी जी।
इस वक्त हालत ये है कि आप कराची की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंटीरियर के छोटे से शहर की बात नहीं कर रहा, कराची की जो मेन हॉस्पिटल्स हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 1000-2000 पेशेंट्स को, ये ज्यादातर पेशेंट्स आपको पता है कि डिहाइड्रेशन के होते हैं, इनको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन चूंकि वहां पे ये सारा जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे और बाद में इमरजेंसी लगाई गई, और इमरजेंसी तब लगाई गई जब तकरीबन 250-300 लोग पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और मैं आपको ऐसे भी मिसाल दे सकता हूँ जिसमें ICU में एयर कंडीशन नहीं है, उसकी वजह से लोगों ने फिर बेचारे अपने रिश्तेदारों को शिफ्ट किया। मेरे अपने अजीज हैं, मैं अपना आप मिसाल दे रहा हूँ, जिनको ICU से शिफ्ट इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा कि भी ICU में एयर कंडीशन नहीं है, बेहतर ये कि इनको आप अपने प्राइवेट किसी अरेंजमेंट में रखें, घर ले जाएं।
अच्छा।
तो अब ये एक्चुअली यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, अब जो आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर तरीके से कम इन दिनों में, एक तरफ रमजान शरीफ है और दूसरी तरफ ये हीट वेव चल रही है 45-46 सेंटीग्रेड, इन दिनों में कम से कम अगर आप उसका पहले से कोई तदारुक करते तो जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो आपको पता है कि पानी का भी सप्लाई उसी से ही जुड़ा हुआ है, वाटर बोर्ड जितने भी इनके जो हाइड्रेंट्स हैं जो पंप्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं। अक्सर जो शिकायत आ रही है कि जी वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी गई है क्योंकि बकायात नहीं मिले, मसला ये है कि इस मौके पर अगर आपको अपनी रिकवरीज करनी है और लोग मारे जाएं ये तो पाकिस्तान अफसोस की बात है कि हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ पे टॉशस क्लेम्स जो हैं वो कोर्ट्स में दाखिल नहीं किए जाते। अगर अमेरिका होता या यूरोप होता तो यहाँ तो बिलियन डॉलर के हुकूमत के जो है वो
शहाब उस तो आप हमारे साथ रहें, क्योंकि आपने बिजली का जिक्र किया और हम भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग बिजली ना होने की वजह से हलाक हो गए, बल्कि बहुत सारे जो अमवात हैं वो अपार्टमेंट्स में भी हुई हैं, घरों में हुई हैं। और इस सिलसिले में हमारे साथ ब्रिगेडियर आगा गुल हैं जो कि केस्को के साबिक जनरल मैनेजर रहे हैं। और आगा गुल साहब, आपको भी खुशामदीद।
बहुत शुक्रिया जी।
तो आप हमें बताएं कि बिजली का जो बहरान है वो कराची में बहुत ज़्यादा शदीद हो गया गर्मियों की वजह से, और उसकी जो तलब है वो बढ़ गई, रसद जाहिर है कम रही, लेकिन जिस तरह आपने भी देखा कि भारत में गर्मी आई, इसके बाद आपका क्या ख्याल है कि सिंध सरकार और वफाक को क्या करना चाहिए था ताकि बिजली लोगों तक पहुंचती रहती?
बिजली तक को महदूद करना मैं समझता हूं मोहतरमा बहुत ज्यादती होगी। जो शहाब उस्तो साहब ने बातें कही हैं मैं 100% उनसे मुत्तफिक हूं। इस वक्त बिजली तो एक छोटा सा मसला है, असल मसला तो है एब्सोल्यूट पैथेटिक गवर्नेंस है ही नहीं। आप जो वन टू वन हालात जो हमें पता चल रहे हैं सिंध में, लोगों के पास
जी ब्रिगेडियर आगा गुल उनको हम दोबारा लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसी जी 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 कहिए।
समझता हूँ कि जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तमाम पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जो अपोजिशन में हैं, इन्होंने नहायत खुशी से 18th अमेंडमेंट पास की। 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान एक कॉन्फेडरेशन बन गया है जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जो चीफ मिनिस्टर आ गया, जो प्राइम मिनिस्टर आ गया, वो या तो अल्लाह की तरफ से फौत हो जाए या 5 साल पूरे करेगा, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। एक से एक नालायक बैठा हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सूबे का काम है। सूबे के जो बैठे हुए हैं 8-9 साल से वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनका कोई इरादा नहीं कि वो शर्मिंदा होकर रिजाइन कर दें, किसी अच्छे आदमी को लाएं। अगर फौज में इस किस्म का डिजास्टर हो तो ऐसे जनरल को मिनटों सेकंडों में उठा के भेज दिया जाता है घर कि तुम फेल हो गए हो डिलीवर करने में। बिजली तो मैंने आपसे कहा ना, बिजली तो एक बहुत छोटा मसला है।
जी जी।
असल मसला तो गवर्नेंस का है। जब गवर्नेंस नहीं होगी कोई काम सीधा नहीं होगा।
जी जी, उसी हवाले से बताइए ब्रिगेडियर आगोल, क्योंकि हम जानते हैं कि बिजली इसका एक हिस्सा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये एक अहम हिस्सा है। आप क्या समझते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को पावर नहीं मिला घरों में ऐसे वक्त में जब रमज़ान है और जब इतनी गर्मी है, इसकी फराहमी को बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता था?
जी जी, मैं अर्ज करता हूँ, ये बिजली जो है ऑटोमेटिकली तो पैदा नहीं होती। इसको जो जनरेटिंग कंपनीज हैं, जो IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वापदा की जनरेटिंग कंपनीज हैं, वो तेल लेती हैं, गैस खरीदती हैं, फर्नेस ऑयल लेती हैं और बिजली बनाती हैं। उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पैसे कलेक्ट करती हैं और देती हैं वापस। जब गवर्नेंस वीक होगी चोरी बेतहाशा होगी, क्योंकि हुकूमत का डर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास तो कोई ऐसा डंडा नहीं है कि वो लोगों से पैसे ले सके, वो खुद भी चोरी में शामिल हो जाती हैं। इसका जो डिस्क्रेडिट है ये बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट हमारी पब्लिक को भी जाता है। हर आदमी समझता है कि मैं बिजली का बिल ना दूं, मैं चोरी कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि इस किश्ती में इतने सुराख सब ने किए हैं कि अब किश्ती डूब रही है और ये सब डूब रहे हैं। हमारे पास अभी भी 22,000 मेगावाट जनरेशन की कैपेसिटी है और हम इस वक्त 14,000 मेगावाट भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कंपनीज के पास पैसे नहीं है। क्यों कंपनीज के पास पैसे नहीं है? चोरी बेतहाशा हो रही है, लोग अपने बिल दे नहीं रहे और हुकूमत जो है वो बैठी हुई नजारा कर रही है। प्राइवेटाइजेशन करने का तो मकसद ये था कि जिस कंपनी को आप प्राइवेटाइज करके दे रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक, वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की रिट उसके साथ नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर अगर 100% नहीं 90% नहीं होगा, तो वो कंपनी कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगी? और जब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, बिजली नहीं बन सकेगी। तो बदकिस्मती से ये विशेष साइकिल है जिसमें आम आदमी गरीब से लेकर अमीर तक सब मुजरिम है, जो पैसे नहीं देते और जो बिजली चोरी करते हैं, इंडस्ट्री भी शामिल है उसके अंदर।
जी जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, क्योंकि अगले 5 मिनट हम बात करेंगे इस कराची की सूरत हाल के बारे में, और अंदरूनी सिंध में भी कुछ हलाकतें हुई हैं गर्मी की वजह से। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सिंध में गर्मी की शदीद लहर के बारे में। हमारे साथ इस वक्त हैं सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा शहाब उस्तो, ब्रिगेडियर आगा गुल जो कि केस्को के साबिक जनरल मैनेजर हैं, और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर अहमद कमाल। अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे मुफ्त कॉल करने का नंबर है 0800-777-789-0800-777-789। इस वक्त एक आईडी ब्रेक लेते हैं। जी, तो जब तक अहमद कमाल आएँ, शहाब उस्तो, आप भी जानते हैं कि अनकरीब सिंध में कराची में मानसून की बारिशें आ जाएंगी। आपने देखा कि हुकूमत ने कोई तैयारी की है इस मौके के लिए?
देखिए जी, बात वही आ जाती है कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कराची बहुत सारे वाकयात का और बहुत सारे पॉलिसीज का जो है एक तरफ एक टारगेट है, एक तरफ एंटी टेररिस्ट और एंटी करप्शन और एंटी क्राइम ड्राइव चल रही है, जिसमें कहा जाता है और बाकी बल्कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट के करीब हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उनके मिडिलमैन भी हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग भी हैं। तो एक तो उसकी वजह से एक नियर पैनिक की सिचुएशन है कराची में, और इस हद तक के कहा जाता है कि शायद एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो भी शायद आजकल सीन से गायब है।
जी जी,
तो अब इस तरह की सूरत हाल में आप अंदाजा कर सकती हैं कि कराची के अंदर जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट्स या ओनरशिप लेना या चीजों को देखें, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा मतलब सब मेगा सिटी, मतलब मोर देन 2 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ पे, और आपको पता है कि 55% लोग जो हैं वो कच्ची आबादी में रहते हैं, जिनके पास वैसे ही बुनियादी सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं। बेतहाशा यहाँ पे जो है वो सेटलमेंट हो रही हैं, बहुत से दूसरे मुल्कों से, बहुत से दूसरे इलाकों से, इंटीरियर सिंध से लोग आ रहे हैं। तो कराची के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए जो रिक्वायर्ड कमिटमेंट चाहिए, जो पॉलिसीज चाहिए, जो गुड गवर्नेंस चाहिए, वो तो लॉन्ग टर्म बल्कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो तो नजर नहीं आ रहा।
अच्छा,
यहाँ पे तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होती है, जब कोई डिजास्टर पड़ता है तो फिर सबसे पहला काम ये होता है कि जी मीडिया पे आके जो पब्लिक डोमेन है उसमें आके मुकाबला करना है कि जी मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी जो मेरे अपोनेंट्स कह रहे हैं वो गलत है। लोग बेचारे मर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे होते हैं, जैसे अभी हो रहा है। आप इसको किसी भी अगर इंडिपेंडेंटली आप किसी डॉक्टर से पूछें, हॉस्पिटल में किसी से मिला के पूछें, इनसे कहेंगे कि प्रैक्टिकली कुछ हुआ है?
जी,
प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, सिर्फ बयानात की हद तक। तो मैं समझता हूँ कि जो कमिंग, अगर पहले खुदा करे बारिशें हों कराची में, काफी अर्से से नहीं हुई है, अगर बारिशें यहाँ होती है तो फिर बारिशें न होना भी डिजास्टर है यहाँ पे, बारिशें होना उससे कहीं ज्यादा डिजास्टर।
जी जी,
क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि स्वीट का प्रॉब्लम और बाकी जो मसाइल होते हैं, फिर एक और वो नया मसला पैदा होता है।
बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिगेडियर आगा गुल, आप जानते हैं कि लगभग जुलाई के वस्त में बारिशें शुरू हो जाएंगी, और आप क्या समझते हैं कि इदारों को किस हद तक हरकत में आना चाहिए? NDMA और दूसरे जो इदारे हैं, PDMA वगैरह, उनको ये जो नालों की सफाई वगैरह है, ये करना कितना ज़रूरी है?
देखिए जी, ये NDMA तो बहुत बात की बात है, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम है जो उनको 3-4 महीने पहले शुरू कर देने चाहिए थे। अभी जो हम देख रहे हैं काफी सालों से, कोई सोशल क्लैमिटी, बीमार होने से थरपारकर में बच्चे बेचारे फौत होने शुरू हो गए, पाकिस्तान फौज पाकिस्तान रेंजर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट होके रह गए, कोई काम करने को तैयार नहीं है। और उसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऑफिसर्स अच्छे नहीं है, उसकी बड़ी वजह ये है कि पॉलिटिकल शेपरॉनिंग नहीं है, मेरिटोक्रेसी नहीं है, लोग सिफारिशों पे लगाए जाते हैं, ग्रेड 20 की जगह पर ग्रेड 18 का बंदा लगा होगा, वो जो पॉलिटिशियन उसका मास्टर है जो बिल्कुल सिक्खा शाही बन के रह गई है वो उसकी खिदमत कर रहा होगा। जो कॉन्सेप्ट है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, लोगों की नौकर है, वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। पॉलिटिशियन समझते हैं हम राजे नवाब हैं और ब्यूरोक्रेसी आप टेलीफोन करें कोई मिलने को तैयार नहीं होता, तो ये क्या करेंगे फिर जब कल ये नाले भरेंगे और तबाही मचेगी, आप देख लेना, फिर पाकिस्तान रेंजर्स को, पाकिस्तान आर्मी को बुलाएंगे या पाकिस्तान नेवी को बुला लेंगे। ये तो एक विशेष साइकिल बन गया है
जी जी।
और इनको दे आर नॉट लर्निंग अ लेसन, सबक कोई नहीं सीख रहा कि हम अपना काम खुद करें, फौज के हाथ भरे हुए हैं, फौज की जान छोड़ें, जो फौज के असली काम है अगर वही कर ले तो हम उनको सलूट करते हैं। कौम वही है, लोग वही है, सिर्फ मैनेजमेंट और गवर्नेंस का प्रॉब्लम है।
बिल्कुल जी जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, बहुत मुख्तसर और बारी बारी कुछ कॉलर्स को लेते हैं। हमें कॉल किया है चित्राल से मोहम्मद शफी ने। जी जनाब कहिए, मोहम्मद शफी चित्राल से। अच्छा उनकी लाइन शायद जी, मोहम्मद शफी चित्राल से कहिए।
बोल रहा हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम, शफी चित्राल पूनी। गुजारिश ये है कि हमेशा बिजली की चोरी बड़े लोग करते हैं और या दूसरे उसके साथ जो रवाबित हैं ये लोग करते हैं। दूसरी बात कि सिंध के अंदर हलाकतें जो है, उस दिन जब ये फौदगियाँ हुई तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि सिबी के अंदर 47 था। तो सिबी में अमवात इतने ही नहीं हुए जितने कराची में, इसकी बुनियादी वजह हमें समझ नहीं आ रही। बहुत
अच्छा, शुक्रिया। और हमें कॉल किया है कलीमुल्ला नियाजी ने मियाँ वाली से भी। जी कहिए कलीमुल्ला नियाजी।
मोहताजी खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का ये बिल्कुल डिजर्व भी हम करते हैं कि जिस क्लास को हम इलेक्ट करते हैं तो हमारा यह हशर होना चाहिए। सिंध में आप देखें MK और पीपल्स पार्टी, ये अजाब हैं, इसके बावजूद उनको लोग वोट देते हैं, चाहे जिस वजह से भी देते हैं। ब्रिगेडियर साहब से जो सवाल है वो बहुत अच्छी उन्होंने बात की है, जो 18th Amendment है ये पाकिस्तान को तोड़ने का एक पहला स्टेप था। अगर ये बाकी मुखलिस हैं तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम था उसी को ये चलाते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी फौज ऐसे मौके पे क्यों वो इनको प्रेशर नहीं डालती कि इस तरह के अकवानी न बने। दूसरा ये है कि काला बाग डैम हो या बादशाह डैम हो, उन पर ये काम क्यों नहीं करते। तो तमाम काम जब फौज ही कर रही है, जहां जान देनी हो फौज होती है, तो ऐसे कामों में भी फौज इंटरफियर करे, भले वो हुकूमत ना संभाले, वो चीज अच्छी नहीं।
बहुत शुक्रिया। और हमें कॉल किया है मुरीद खान ने मियांवाली से। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त कर रहा हूँ, मैं हैरान हूँ 26 मार्च में सुबाई की सुबह के और वो उनके कोई बिल्कुल एक जीरो बराबर भी नहीं है, कम अज कम और कुछ नहीं करते तो लोगों को अवेयरनेस देते TV मीडिया के जरिए, लोगों को पता चलता कि भाई ये हमारे ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। और अगर और कुछ भी नहीं होता तो ये पानी तो लोगों को पहुँचा देते, लोगों को पानी की वजह से लोग बेचारे मर गए हैं, बहुत अफसोस का मुकाम है। और ये जो बिजली ना कोई खाने की चीज़ है पीने की चीज है।
जी जी,
बिजली के बगैर तो इंसान गुजारा हो सकता है लेकिन पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता।
बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात, मैं चाहूँगी कि एक और मौजू पर भी बात करें और लिहाजा हम चाहते हैं कि आप लोग 5 मिनट और रहें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी वक्तन फवक्तन बढ़ जाती है और अभी भी एक मसला आ गया है जिसके बारे में हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त हम एक मुख्तसर ID ब्रेक लेते हैं।
व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اور موضوع یہ ہے کہ ذکی الرحمان لکھوی وہ اب ایک دوبارہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا باعث بن گئے ہیں. ہم سب سے پہلے آپ کو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں اور پھر دونوں صاحبان کو سنتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم.
پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں نے بھارت کی طرف سے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام خود مختار ہے اور حکومت کے تابع نہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت دو طرفہ مذاکرات میں کسی تیسرے فریق کی معاونت کے خلاف ہے, اسے یہ معاملہ بھی دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے. رواں ہفتے سلامتی کونسل کی سینکشنز کمیٹی کا اجلاس بھارت کی درخواست پر بلایا گیا, جس میں بھارت کی تجویز پر پاکستان سے لکھوی کی رہائی پر وضاحت طلب کی جانی تھی, لیکن چین نے یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی ہے کہ بھارت نے اس معاملے پر مکمل معلومات فراہم نہیں کی. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کا قانونی نظام حکومت کے تابع نہیں.
لیگل سسٹم ہمارے تابع نہیں ہے, جیسے آپ کا لیگل سسٹم ہے آپ کے تابع نہیں ہے اور ملتا جلتا ہے. ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی چاہے پاکستان میں ہو یا بھارت میں ہو یا افغانستان میں ہو, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب اگر بھارت نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہر فورم پر, بالخصوص انٹرنیشنل فورم پر, انہوں نے پاکستان کو نیچا دکھانا ہے, تو وہ دوستانہ ماحول جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے برعکس ہے. ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مینس ہے, یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, چاہے بھارت وقتی طور پر اس کا نقصان اٹھا رہا ہے یا پاکستان اٹھا رہا ہے یا افغانستان اٹھا رہا ہے, یہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. کسی کے مفاد میں نہیں ہے, ہمیں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائے بغیر تعاون کا سوچنا ہے.
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر مشاہد اللہ خان نے بھی بھارت کے رویے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا. ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف بھارتی شہر ممبئی میں 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستان نے عدالتی کارروائی شروع کر رکھی ہے. گزشتہ سال کے اواخر میں ایک پاکستانی عدالت نے ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا, جس پر اس وقت بھی بھارت نے شدید احتجاج کیا تھا. پاکستانی حکام نے لکھوی کی رہائی کے فوری بعد ہی انہیں خدشہ نقض امن عامہ کے قانون کے تحت ایک ماہ کے لیے نظر بند کر دیا تھا, اور اس نظر بندی میں تین بار توسیع کی گئی. اپریل میں ان کی نظر بندی میں مزید توسیع نہ کرتے ہوئے انہیں عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا. حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کے درمیان تلخ بیان بازی کا سلسلہ جاری رہا, جس سے عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک سے رابطہ کر کے انہیں اپنے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی تجویز دی. بھارتی وزیر اعظم کے اپنے پاکستانی ہم منصب کو رمضان کے موقع پر ٹیلی فون, اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے ماہی گیروں کی رہائی کے بعد حالات میں بہتری آئی ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی تو آپ دونوں صاحبان کا نقطہ نظر میں سننا چاہوں گی. اور بریگیڈیئر آغا گل, آپ بتائیے کہ بھارت نے لکھوی کا جو معاملہ ہے وہ اقوام متحدہ میں لے جانے کا جو فیصلہ کیا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
بات یہ ہے جی کہ بھارت اور آپ کے ملک امریکہ کا بھی سٹائل یہ رہا ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہم فالو کریں گے, اور جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی اس کے لیے ہمارے رولز اور ہوں گے. امریکہ اور بھارت دونوں کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پہ ہم بائی لیٹرل بات کریں گے. امریکہ نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں یا یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھے گی, اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو 47 کا ایجنڈا ابھی تک انکمپلیٹ ہے اس کو مکمل کریں گے. وہ کہتے نہیں ہم بھارت سے بات کریں. بھارت بڑا ملک ہے, پاکستان سے 7-8 گنا ملک ہے بڑا, یوزر پر ہے, سیاچن تو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, بھارت کیوں ہم سے بیٹھ کے بات کرے گا؟ لیکن لکھوی کے موقع پہ وہ کہتے ہیں نا لکھوی کے لیے ہم یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل جائیں گے. بسم اللہ, ضرور جائیں, ہم بھی بھارت کو لے کے جائیں گے کشمیر کے لیے بھی اور سر کریک کے لیے بھی, سیاچن کے لیے بھی, اور جو وہ اس وقت انسرجنسی کروا رہا ہے بلوچستان میں اور فاٹا میں اس کے لیے بھی. تو اگر وہ فالو کر سکتے ہیں تو ہم بھی راستہ فالو کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان لیٹ کے بھارت کو چلنے دے اس کے اوپر. آئی تھنک ہم بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ پیٹریوٹک ہے اور وہ کہتا ہے کہ کچھ ہو جائے مر جائیں گے جان دے دیں گے, بھارت کے سامنے نہیں جھکیں گے.
اچھا
جی, علم ہونا چاہیے.
جی جی, اور شہاب استو آپ کو بھی سننا چاہوں گی میں اس موضوع پر. آپ بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ چین نے جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس موقع پہ, اور وہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے جانے کی بجائے دو طرفہ طریقے سے اس پر بات چیت ہونی چاہیے. عمومی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے پر؟
دیکھیں جی, میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے, ہم دونوں ملکوں کے بیچ میں امن ہونا چاہیے, اور جب تک امن نہیں ہوگا یہاں پہ جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے ڈیفینس وغیرہ یا سروسز پہ ہم خرچہ کرتے ہیں وہ جب تک ہم ڈائیورٹ نہیں کریں گے اپنے غربت ختم کرنے میں یا ہیومن ریسورسز ڈیولپ کرنے میں انفراسٹرکچر بنانے میں, میں نہیں سمجھتا کہ اس خطے کا کوئی فیوچر ہے. ہاں, سوال جو ابھی ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک جو ہے دوبارہ ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوا ہے. پاکستان نے انڈیا پہ پچھلے کچھ مہینوں میں بہت سارے الزامات لگائے ہیں, اور کراچی کے حوالے سے بھی الزامات آئے ہیں کہ وہاں پہ را کی جو ہے ایکٹیویٹی جاری ہیں. بلوچستان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے ہم شکایت کرتے رہے ہیں, اور اس کے جواب میں انڈیا نے بھی جو ہے وہ اب اپنا جو ریٹارک ہے وہ بہت زیادہ اگریسو کر دیا ہے. اور آپ ان کے بیانات پڑھیں, ان کے جو الیکشن جاتے ہیں مختلف کی طرف سے, فارن منسٹر کی طرف سے, خود پرائم منسٹر کی طرف سے, وہ کافی اشتعال انگیز ہوتے ہیں.
جی جی,
تو مطلب ہے کہ اس پس منظر میں لکھنوی کا جو یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ بھارت کا ظاہر ہے پاکستان نے اتنی زیادہ شکایت کی ہے, اور ظاہر ہے اس نے بین الاقوامی جو خاص طور پہ پاور بروکر رہے ہیں ہمارے خطے میں ان کے حوالے سے بھی شکایتیں ہوئی ہیں. را کے حوالے سے ہماری سیویئر اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کی طرف سے کافی شکایتیں انڈیا کو کمیونیکیٹ ہوئی ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک اچھا خاصا کیس تھا جو انڈیا کے لیے.
جی جی, اور آپ صحیح کہتے ہیں کہ اس وقت جو جس طرح کی کشیدگی رہی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ, یہ اسی کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے. لیکن اس وقت جی جی جی,
پچھلے دنوں مودی صاحب کا فون آیا تھا نواز شریف صاحب کو,
جی,
جس کے بعد یہ توقع ہم پھر کر رہے ہیں کہ شاید کچھ جو حالات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں.
جی,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مودی ایک فنڈامنٹلسٹ اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ان کا اپنا ایک موقف رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, اور انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی جو ہے وہ رائٹس ایلیمنٹ جو ہے اس نے کافی ریجنل پالیٹکس کو جو ہے وہ ہاسٹل بنایا ہوا ہے, اور جب بھی کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو بجائے اس کو نارملسی کی طرف لے جانے کے لیے وہ جنگ کی بات کرتے ہیں, وہ زیادہ جو ہے ہاسٹلٹی کی بات کرتے ہیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ ہے اس کو زیادہ تکلیف ملتی ہے.
جی,
اور حالات خراب ہوتے ہیں.
جی, بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم آپ دونوں صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سول سوسائٹی کے نمائندہ شہاب استو, اور ان کے ساتھ تھے تجزیہ کار, سیاسی تجزیہ کار بریگیڈیئر آغا گل. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کا واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں غیر سرکاری اداروں کے حوالے سے بڑا ایک تنازع کھڑا ہوا. کہا گیا کہ سیو دی چلڈرن فنڈ کو بند کر دیا گیا, اور ابھی خبر آئی ہے غالباً امریکی پریشر میں کہ سیو دی چلڈرن فنڈ کو ابھی کام کرنے دیا جائے گا. اس حوالے سے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے خیبر پختونخوا میں سربراہ ارشد ہارون اسکائپ پر ہیں۔ ارشد ہارون، آپ کو خوش آمدید۔
السلام علیکم۔
السلام علیکم۔ آپ سب سے پہلے تو سیو دا چلڈرن فنڈ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس ادارے کے بارے میں کیا جانا جاتا ہے، وقتی طور پہ اس پر جو بین لگایا گیا تھا آپ کے خیال میں یہ جائز تھا، اور ابھی اس کو جو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ کتنا اچھا یا اچھا نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس موضوع پر؟
دیکھیں، سیو دا چلڈرن فنڈ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، بین الاقوامی ادارہ ہے، جو بچوں اور ان کی ماؤں کے کا تو بالخصوص، جبکہ غربت اور اس طرح کے اور صحت عامہ کے پروجیکٹس پہ پاکستان میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہے۔ تو اس پہ جہاں تک بین لگانے کا یا اس کو کام کرنے سے روکنے کا فیصلہ ہے وہ کافی تعجب خیز ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس کرائیٹیریا کے تحت ان پہ بین لگایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ سیو دا چلڈرن کو نہ کوئی نوٹس دیا گیا، نہ ان سے کوئی ایکسپلینیشن مانگی گئی۔ رات کو میرے خیال میں منسٹر صاحب نے سوچا اور صبح سویرے انہوں نے اعلان کر دیا، اور اسی اعلان کو اس کے دوسرے دن پھر ان کو واپس لینا پڑا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے۔ تو یہ نی جرک قسم کے فیصلے ہیں اور ریئیکشنز ہیں جس سے اس ملک کی میرے خیال میں بدنامی ہو رہی ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک منظم طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سول سوسائٹی کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، بین الاقوامی یا مقامی، سب کو یہ لگام ڈالنا چاہتے ہیں۔
ارشد ہارون، آپ ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ سرکاری یعنی پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما حفیظ الرحمان لائن پر ہیں۔ حفیظ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔
جی جی، شکریہ۔
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کچھ غیر سرکاری ادارے ہیں اور جس میں سیو دا چلڈرن فنڈ کا نام سر فہرست ہے، جس کو سرکار نے بند کر دیا تھا، اس کو کام نہیں کرنے دیا، اس کی کیا وجہ آپ بتاتے ہیں؟
دیکھیں، میرے خیال میں کچھ این جی اوز ہیں جن کے بارے میں کچھ اس طرح کی اطلاعات تھی کہ وہ مختلف روپ میں یہاں پہ اس ملک کے اندر اپنی جو ہے وہ سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے اکثریت تو وہ این جی اوز ہیں جن کا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے۔ بعض اسکولس کے آڑ میں، اب میرے اپنے شہر میں بھی یہاں پہ ایک این جی او تھا 3-4 سال پہلے، ان کے پاس وہ لائسنس نہیں تھا، لیکن وہ یہاں اسکول بھی انہوں نے کھولا ہوا تھا اور ویلفیئر ایکٹیویٹی بھی کر رہے تھے۔ یہ اس ملک کے اندر چونکہ ایک دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس میں ماضی میں مختلف قسم کے لوگ یہاں اس ملک میں آئے ہیں، تو سکروٹنی کا عمل جہاں مدارس کا جاری ہے، جہاں اسکولوں کا جاری ہے، اسی طریقے سے یہ این جی اوز کا بھی جاری ہے۔
حفیظ صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے مدرسوں کی بات کی، ہم نے جب مدارس کے وفاقی مدارس کے سربراہ مفتی منیب الرحمان سے بات کیا تو انہوں نے کہا کوئی مدارس ابھی تک بند نہیں کیے گئے ہیں، تو این جی اوز کو بند کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟
دیکھیں، بند تو کسی این جی او کو نہیں کیا گیا ہے، ان کی سکروٹنی کا عمل ہے۔ بہت سے مدارس ہیں، بہت سے اسکول ہیں، بہت سے کالجز ہیں جن کی یہ سکروٹنی کا عمل ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو یہ سکروٹنی کا عمل کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ کھل جائیں گے۔ اس میں ایسی کوئی ہزاروں این جی اوز ہیں۔ اب میرے اپنے شہر میں، میرے اپنے صوبے میں تقریباً 250 این جی اوز ہیں، 250 میں سے کوئی ایک این جی او ہے جس کے خلاف یہ انکوائری ہوئی ہے، باقی تو سارے کام کر رہے ہیں۔
اچھا،
اسی طرح لاہور کے اندر تقریباً 1000 سے زیادہ این جی اوز کام کر رہی ہیں، ان میں سے ایک دو این جی اوز جو ہیں جن کے بارے میں یہ اسکول کو شبہات ہیں۔
اچھا،
یہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں، یہ نہیں کہ پورے این جی اوز کو بند کیا جا رہا ہے۔
جی جی، حفیظ صاحب ایک منٹ ہمارے ساتھ رکیں۔ ہمارے ساتھ ارشد ہارون ہیں جو ایس پی او خیبر پختونخوا کے سربراہ ہیں۔ ارشد ہارون، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ این جی اوز کو جس طرح اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے وہ منصفانہ ہے؟
जो सेव द चिल्ड्रन का फैसला आया है और फिर जिस तरीके से उसको लिया गया है वापस, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई स्क्रूटनी हुई है। स्क्रूटनी हम उसे कहते हैं कि आप बाकायदा कोई इल्ज़ाम उस पर लगाते हैं, फिर उसकी तहकीकात होती है, उस तहकीकात के नतीजे में कुछ फाइंडिंग्स आती हैं और उन फाइंडिंग्स की बुनियाद पे आप फैसला करते हैं कि कोई तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन काम करने के काबिल है आपके मुल्क में या नहीं है। इस सारे अमल को सेव द चिल्ड्रन फंड के केस में यकसर नजरअंदाज किया गया है। इस तरह से जो बयानात आ रहे हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर के, उससे साफ जाहिर होता है कि ये बंद करना चाहते हैं और 6 महीने में ये कोई ऐसी ऐसा बहाना तलाश करने की कोशिश में है जिसके नतीजे में जो इनकी नापसंदीदा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे इनकी पार्टी को इख्तलाफ हो सकता है तो उनको बंद किया जाए। इसके अलावा अगर मदारिस को देखें तो ये उसको एक स्क्रूटनी के अमल से गुजार रहे हैं। मैं रूल ऑफ लॉ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शफाफियत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये एक कानून के तहत होना चाहिए। ये किसी मर्जी के किसी भी मिनिस्टर या गवर्नमेंट की मर्जी के ताबे नहीं होना चाहिए। सेव द चिल्ड्रन फंड के केस में हमें साफ जाहिर होता है कि ये मिनिस्टरों के फैसले थे जिसके पीछे दलील मंतक और अकाउंटेबिलिटी का दखल हमें कम नज़र आता है।
अच्छा जी, आप हमारे साथ रुकें, हमें कुछ लोगों ने कॉल किया है, बारी बारी उनको लेते हैं। कोहाट से कॉल किया है खान अकबर आफरीदी ने। जी जनाब कहिए।
हेलो
जी, खान अकबर आफरीदी
जी, बाजी अस्सलाम वालेकुम।
खान अकबर आफरीदी से कहा था बोलने के लिए?
नहीं बाजी, मैं तो सरगोदो सरज कर रहा हूँ, सेठ मुमताज।
अच्छा जी कहिए।
बाजी गुजारिश ये है जी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना बरसगीर पाक वहले में,
जी जी कहिए कहिए,
तो उस वक्त भी एनजीओ ने के हवाले से उन्होंने काम किए थे हिंदुस्तान में, तो वहाँ बहुत उन्होंने देखा कि लोगों को हालात को देखो और इनको फायदा पहुंचाओ फिर इनको झगड़ा कराओ। एक होती है राय, एक होती है दयानतदाराना राय। अफसर साहब ने जो बात की हम उससे मुतफिक नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ होती हैं वो कुछ न कुछ बात करके ही करती हैं, वैसे इन पे आयद कभी पाबंदी नहीं होती।
अच्छा।
सब एनजीओ एक जैसी नहीं है, लेकिन कुछ गैर जरूरी हकों में वो मुलव्वस होते हैं।
अच्छा, शुक्रिया आपके कॉल करने का। और हमें कॉल किया है खान अकबर आफरीदी ने। जी जनाब कहिए। खान अकबर आफरीदी।
हेलो
जी जी कहिए कहिए।
देखिए, हर मुल्क की जो क़यादत होती है वो एक सिंबल के तौर पे होता है जिसको अवाम भी देखते हैं और बैन अक्वामी सतह पर भी उनकी रेपुटेशन बनती है। क्या हमारी क़यादत, ख्वाह वो पिछले 10-15 साल की हुकूमत है या आज, बैन अक्वामी स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रही है? क्यों मजे नहीं लेंगे इंडिया, क्यों मजे नहीं लेगा अमरीका? और अब जो पेशावर से बात कर रहे हैं सेव द चिल्ड्रन की, मेरा एक सिर्फ सवाल है, आप सच बोलें क्योंकि हमारे सियासतदान करप्ट और रिश्वतखोर हैं, क्या बाकी एनजीओस इनको रिश्वत दे रहे हैं और आप नहीं दे रहे, या आपसे उनका रिश्वत का डिमांड है? फ्रेंकली बोल दें। थैंक यू।
अच्छा अरशद हारून, जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें इस पर।
जहां तक रिश्वत की बात है उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी कोई चीज मेरे नोटिस में नहीं आई है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर जैसे हमारे कॉलर साहब ने फरमाया कि जी कुछ ना कुछ तो होगा, तो अगर कुछ है तो उसको मंजरेआम पे लाया जाए, उसको शफाफ तरीके से कौम को बताया जाए कि क्या असल मारूजी हकायक हैं और जिसके नतीजे में ये फैसले हो रहे हैं। अगर इसी तरह रात को फैसले होते हैं और सुबह उनका ऐलान किया जाता है तो ये बादशाहतों और डिक्टेटर्स के शेवे होते हैं, वर्किंग डेमोक्रेसीज में इन चीज़ों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सिविल सोसाइटी की तरफ से मेरा एक ही पैगाम है कि हम कानून के ताबे लोग हैं, हम अकाउंटेबल लोग हैं, जानते हैं कि किस तरह अकाउंटेबिलिटी होती है और हम अपने आप को रियासत को अकाउंटेबल समझते हैं। तो अगर किसी इदारे को हमसे शिकायत है तो उस कानून को उस इस्तेमाल करते हुए हमारी अकाउंटेबिलिटी की जाए और शफाफियत से कौम को बताया जाए कि जी असल सूरत हाल क्या है, बजाय इसके कि रात को हम सोचें और सुबह फैसले करें कि फलां एनजीओ को बंद करना है, फलां को बंद नहीं करना।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे गैर सरकारी इदारा SPO के खैबर पख्तूनख्वा में सरबरा अरशद हारून और उनके साथ थे PML नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर हफीज़ुर रहमान। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और इस वक्त हम बात करेंगे उन कैदियों के बारे में जो कि जेलों से निकल जाते हैं, फरार होने में कामयाब होते हैं, और हम एक मुआवजना करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका का, जहां दोनों मुल्कों में जो कैदी फरार हुए हैं उस पर सरकार ने क्या काम किया है, कार्रवाई की है। इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ सियासी तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफ़ज़ई हैं और अनकरीब हमारे साथ होंगी डॉक्टर रेहाना लतीफ़ जो कि अमेरिका में हैं और साइकाइट्रिस्ट हैं। तो मुश्ताक यूसुफ़ज़ई, आपको खुश आमदेद। अच्छा, मुश्ताक यूसुफ़ज़ई को हम अनकरीब लेते हैं, लेकिन इसी हवाले से हम आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ख़बरों में सुना होगा कि कोई 40 पुलिस अहलकार हैं जो DI खान जेल से कैदियों को छुड़ाने में मददगार साबित हुए थे। हमारी जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि इन लोगों को 2 साल बाद अभी मुअत्तल कर दिया गया है। इस मौजू को हम लेंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट में भी कुछ कैदी फरार हुए थे और इस सिलसिले में अमेरिका में भी कुछ एक्शन लिया गया उन पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इन कैदियों को फरार होने में मदद दी थी। लेकिन आइए सबसे पहले पाकिस्तान की रिपोर्ट सुनते हैं। ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं शमीम शाहिद।
पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने 2 साल कबल डेरा इस्माइल खान की सेंट्रल जेल पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान अपने फराइज से गफलत बरतने वाले 40 अहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जुलाई 2013 में जदीद हथियारों से लैस शिद्दत पसंदों ने डेरा इस्माइल खान की जेल पर हमला करके वहां से अपने दर्जनों साथियों समेत 280 से जायद कैदियों को फरार करवाया था। इस हमले की जिम्मेदारी कलदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी और इसमें पुलिस अहलकारों समेत कम अज कम 12 अपराध हलाक हो गए थे। डेरा इस्माइल खान की जिले पुलिस ऑफिसर सादिक बलोच ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हमले के वक्त जेल में ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों के खिलाफ महकमाना तहकीकात शुरू की गई थी, जिसमें इन अहलकारों को गफलत का मुर्तकिब पाया गया।
उस वक्त यानी उस शब को जेल के अंदर पुलिस अहलकार तैनात थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो लोग थे टोटल उनकी तादाद 40 थी, जिसके लिए हमें IG साहब की तरफ से हुक्म हुआ था कि आप इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उनको सजा दें। तो हमने फिर प्रॉपर तरीके से उनकी इंक्वायरी की और जिसमें वो गिल्टी करार पाए, लिहाजा वहाँ पे ड्यूटी से गफलत बरतने पर उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 40 के 40 बर्खास्त हो जाएंगे।
बर्खास्त किए जाने वालों में 1 सब इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 36 कांस्टेबल शामिल है। ये अफराद इस महकमाना फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का हक रखते हैं। शिद्दत पसंदों की तरफ से 2012 में बनू की मरकजी जेल पर भी हमला किया गया था, जिससे यहाँ स्केत सैकड़ों कैदी फरार हो गए थे। इन हमलों में फरार होने वाले कैदियों में दहशतगर्दी समेत संगीन जराय में मुलविस लोग भी शामिल थे। मुल्क को दरपेश सूरत हाल और जेलों पर हमलों के तनाजुर में مختلف شہروں میں قائم جیلوں کی سیکورٹی پہلی انتہائی سخت کی جا چکی ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کو بھی یہاں چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ رواں سال کے اوائل میں شمالی علاقے گلگت بلتستان کی ایک جیل سے بھی 4 قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، جن میں سے ایک ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا جبکہ 2 بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فرار ہونے والے قیدیوں میں سے ایک کے بارے میں حکام کا کہنا تھا کہ وہ جون 2013 میں ننگا پربت کی بیس کیمپ پر ہونے والے حملے میں ملوث تھے۔ اس حملے میں 10 غیر ملکی سیاحوں سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جی، اور مشتاق یوسف زئی، آپ سے ہم ابتدا کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی جی بالکل۔
تو یہ بتائیے کہ جتنے جیل توڑے گئے، یعنی 2 سال پہلے آپ نے دیکھا ڈی آئی خان جیل توڑا گیا، بنو جیل تھا، اور اس طرح کے واقعات عام ہو گئے تھے، آپ ہمیں بتائیں کیا یہ وہ زمانہ تھا جب پولیس اہلکار طالبان کے حامی ہوتے تھے اور اب ایسا نہیں رہا؟ کیا صورتحال ہے، کیا فرق آیا ہے؟
جی بالکل، دیکھیں یہ صرف پولیس کی بات نہیں تھی، باقی جو محکموں کے لوگ تھے، سول ایڈمنسٹریشن کے بھی لوگ ان میں شامل تھے، ان کی ہمدردی اور طالبان کے ساتھ تھی۔ اور جب بنو جیل پر حملہ ہوا تھا تو خود طالبان نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ان کو جیل کے اندر سے معلومات دی گئی تھی، اور جیل حکام نے اور باقی جو گورنمنٹ اہلکار تھے انہوں نے کافی مدد فراہم کی تھی۔ تو دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان، کیونکہ یہ تو کافی دور افتادہ علاقے ہیں، اور وہ لوگ نکل گئے تھے شمالی وزیرستان سے، وہ بنو آئے تھے، اور بنو جب آپ پہنچ گئے تو آپ کو چونی میں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک وہاں پہ کافی چیک پوائنٹس تھی فوج کی، ملیشیا کی اور پولیس کی اور پھر خاصہ دار فورس کی، تو وہاں تک آنا، پھر جیل بریک کرنا، پوری رات کی کاروائی کرنا، بالکل وہ جو لوگ تھے بنو میں وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بارات کی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا، پھر انہیں ہوائی فائرنگ کی خوشی سے کہ ان کے جو قیدی تھے، اسپیشلی عدنان رشید جو کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک سابق اہلکار تھا، اور بعد میں طالبان نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ بنو جیل کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو ان کو چلانے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حکومت، پولیس، باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے ان کے تعاون کے بغیر ایسا کام جو ہے وہ ناممکن ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ کچھ لوگ جو بنو جیل میں اس وقت ان کی ڈیوٹی تھی اور ان کے خلاف انہوں نے، حکومت نے اس وقت جب انکوائری کمیٹی بنائی تھی تو ان کے خلاف کارروائی کا بھی انہوں نے سفارش کی تھی، لیکن ان کو پھر ڈی خان شفٹ کیا گیا تھا۔
اچھا،
اور پھر وہی ہوا جو بنو میں ہوا تھا، یعنی وہ لوگ پھر ڈی خان جیل کے اندر موجود تھے اور انہوں نے پھر وہی کارروائی وہاں پہ کی، وہی پہ سٹیشن انہوں نے طالبان کو پرووائڈ کی، اور اسی طرح کا حملہ ہوا تھا ڈی خان میں جو کہ ایک سال پہلے بنو میں ہوا تھا۔
بالکل بالکل، مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ رہیں، اس لیے کہ ایک بہت دلچسپ واقعہ جو ہوا ہے امریکہ میں، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ نیو یارک سے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف ہیں اور انہوں نے اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر ریحانہ، آپ کو خوش آمدید۔
جی خوش آمدید۔
تو امید کر رہے ہیں کہ آپ کو عنقریب ہم دیکھ بھی سکیں گے، اور آپ ہمیں بتائیں کہ نیو یارک اسٹیٹ کے قیدیوں کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ بہت کچھ میڈیا میں آیا ہے کہ وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ جانتی ہیں کہ ایک خاتون اہلکار تھیں جو جیل میں کام کرتی تھیں، جنہوں نے ان کو فرار ہونے میں مدد دی، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس بہت جلد ان لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ یہ بتائیے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس وقت امریکہ استعمال کر رہا ہے، جس سے شاید پاکستان بھی مستفید ہو کہ جو لوگ قید سے بھاگ جاتے ہیں ان کو پکڑنے میں وہ مددگار ثابت ہوتی ہے؟
اصل میں ابھی ریسنٹلی یہ میں نے جو سنا تھا نیوز میں وہ یہ تھا کہ اگر ایسے پرزنرز کو ٹریکنگ ڈیوائسز لگا دی جائیں تو ان کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی ڈیوائس ان کے لیے نہیں ڈھونڈی ہے، لیکن وہ میرے خیال میں अभी तक यही मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ उनके जैसे इंफ्रारेड ये जो रात को देखने वाले जो विजुअल उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी घने जंगलों में हैं, वो आम स्ट्रीट्स पे नहीं है,
जी जी।
तो उनको ढूंढना काफी मुश्किल पड़ रहा है उनको। उन्होंने जैसे डॉग्स जो हैं वो जो उनके पास होते हैं ट्रेन डॉग्स, वो भी ढूंढ नहीं पाए क्योंकि वो उससे पहले निकल गए और उनको अभी तक मिल नहीं सका है कि डॉग्स की वजह से वो उनको लोकेट नहीं कर सके हैं। लेकिन उन्होंने अभी डीएनए से उनको पता लगा है कि वो किसी अच्छा
जी डॉक्टर रेहाना, ये डीएनए का जो मामला है ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि डीएनए से बिल्कुल पक्का पता चल जाता है कि ये मुजरिम जो है वो उस जगह पर मौजूद था। ये बताइए कि ये जो दो लोग फरार हुए न्यूयॉर्क स्टेट जेल से, उनका डीएनए कहाँ मिला था और उससे क्या पता चला है?
उनको ये देखने में, उनको ये सुनने में आया कि वो किसी के घर में उन्होंने जाके ये नहीं पता लगा, मुझे इसकी खबर अभी तक कोई ऐसी खास सुनने में नहीं आई कि उन्होंने घर वालों के मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में देखा, यू नो उनके उनके निशानात मिले हैं और डीएनए मिले हैं कप्स पे या जूसेस पीने पे या खाने की चीज़ों पे या हैमबर्गर्स वगैरह पे। तो ऐसा मालूम देता है कि उन्होंने किसी के घर में स्ट्रेंज घर में जाके चीज़ें अपने खाने पीने की और फिर वहाँ से वो आगे निकल चले। उनके देखने में आया है और ये सुनने में ऑल्सो आया है कि उनको उनके जूते भी मिले हैं और कोई ब्लड भी मिला है जिस पाथ पे वो गए हैं। तो उनको ये ख्याल है कि उनमें से एक के पास जूते भी नहीं हैं।
अच्छा।
और वो पैरों पे वॉक करते हुए जा रहे हैं, आए नो आइडिया कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि कोई क्यों अपने जूते छोड़ गया। लेकिन कई चीज़ें उनको ऐसी मिली हैं मुख्तसर जगहों पे जहां वो ठहरे हैं छोटी छोटी टाइम पे और फिर वो वहां से आगे निकल गए। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो किस तरह उसको उनके उनको इनके गिर्द वो डालेंगे, एक सर्कल बना रहे, वो सोच रहे हैं कि जितना भी एरिया कैचमेंट एरिया है उसमें हर जगह पुलिस की चौकियां हों, हर जगह पुलिस मौजूद हो ताकि वो निकल ना सकें उस जंगल के एरिया से। लेकिन ये अभी तक नहीं पता लगा, ये आजकल आज मेरे ख्याल में थर्ड वीक ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है कि वो उनको उस जंगल से कैसे निकालेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो कोई और तरीका यूज करें या और कोई यू नो लाइक जाने की, अब जंगल के अंदर जाके वो कैसे करेंगे ये मुझे नहीं समझ आती।
जी जी, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि अब जो भी कैदी हैं वो जो मफरूर होते हैं उनको तेज़ी से पकड़ा जाता है और हम देखेंगे कि अगर ये लोग पकड़ने में कामयाब होते हैं। हमारे पास वक्त नहीं रहा, वरना हम मुश्ताक यूसुफ़ज़ई से ज़रूर सवाल करते कि इस वक्त पाकिस्तान भी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। लेकिन जहां रंग का प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हुआ, हमारे साथ थे पाकिस्तान से सियासी तज़्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफ़ज़ई और यहां न्यूयॉर्क में साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रेहाना लतीफ़। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़। इससे पहले आपने सुना केपी में एक गैर सरकारी इदारा एसपीओ के सरबरा अरशद हारून को, उनके साथ थे पीएमएल नून के सेनेटर हफीज़ुर रहमान और इब्तिदा में थे हमारे साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा शहाब उस्तो, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर अहमद कमाल और केस्को के साबिक जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर आगा गुल। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर्स थे जैक्सन विट और मार्टिन क्रोसियस, प्रोड्यूसर्स अरीशा खान और अंजुम हेरल गिल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हुद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।